मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 सितंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अजिंक्य कश्मीरे कोल्हापुर से, तरुण कुमार बागपत उत्तर प्रदेश से, शिवम शर्मा मालीपुर अंबेडकर नगर से और राजन पांडे आप भी मालीपुर अंबेडकर नगर से। तो अजिंक्य, तरुण, शिवम और राजन आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज एक सूचना है और यह सूचना उनके लिए है जो अभी 5th बैच की क्लासेस अटेंड करने के लिए भोपाल आने वाले हैं। मित्रों सूचना यह है कि आप सब में से जो भी स्टूडेंट अभी भोपाल आने वाले हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके बारे में आपके एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स को सूचित किया जाए ताकि वो आपसे संपर्क स्थापित कर सकें, हो सकता है कि आप लोग एक साथ आने का प्लान बना सकें, कुछ इस तरह का अगर आप सोचते हैं तो आप लोग 3-4 सूचनाओं के साथ ईमेल लिखकर एकेडमी को भिजवा दें, उसकी घोषणा इस डेली ऑडियो गाइडेंस में कर दी जाएगी। जो सूचनाएं आपको देनी है मित्रों उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर और जिस स्थान से आप आ रहे हैं, ये 4 सूचनाएं होनी बहुत जरूरी हैं। यदि उसमें से कोई भी सूचना मिसिंग होगी तो स्वाभाविक तौर पर आपके नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। मैं दोहरा देता हूं, आपका उसमें नाम होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नो डाउट आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ ही आप किस स्थान से आ रहे हैं इसका उल्लेख होना चाहिए। जैसे ही आप एकेडमी को यह सूचनाएं भेजेंगे नेक्स्ट डे सुबह के डेली ऑडियो गाइडेंस में इसकी सूचना इस पर दे दी जाएगी और फिर जो भी स्टूडेंट उनसे संपर्क स्थापित करना चाह रहे हैं वे उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। याद रखिए कि ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसा चाह रहे हैं। मैं यहां एक बात और भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 5th बैच के जो हमारे स्टूडेंट हैं इससे पहले भी वो अपने मोबाइल नंबर, स्थान, ये सारी सूचनाएं भेजते रहे हैं और रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि उनके नाम की घोषणा कर दी जाए कि जो जो उनके एरिया से आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे संपर्क करें। मित्रों इतना पहले नाम घोषित करना हम व्यावहारिक नहीं समझते हैं, उसके कुछ दूसरे कारण भी हैं। तो इसलिए अब चूंकि लिस्ट पूरी फाइनल हो चुकी है तो आज इसकी विधिवत रूप से घोषणा करते हुए आप लोगों के नंबर आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप सब यदि चाहें तो अपनी सूचनाएं एकेडमी के पास उसी ईमेल एड्रेस पर भिजवा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों सच पूछे तो कल के AIR न्यूज में कुछ विशेष बात करने को नहीं है लेकिन 2 टॉपिक हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो आपने शुरू की ही न्यूज में सुनी कि जो आसियान देश है उनकी जो शिखर बैठक है वो लाओस की राजधानी में होने जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी जो खबर थी मित्रों वो सिनेमा को लेकर थी कि ब्रिक्स देशों का जो सिनेमा का जो एक फेस्टिवल जो दिल्ली में हो रहा था वह अब संपन्न हो गया है और उसमें हमारे जो INB मिनिस्टर हैं नायडू जी उन्होंने कुछ बातें कही। तो मित्रों एशियन सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सिनेमा पर आपसे बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आपके मेंस के सिलेबस में आप देखेंगे कि साहित्य, कला और संस्कृति स्पेशली मेंशन किया हुआ है, और उससे मेंस में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर मेंस में, फर्स्ट पेपर में तो खासकर वो हिस्ट्री का पार्ट होने की वजह से उस एंगल से पूछ लिया जाता है, और सेकेंड पेपर में खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्रिएटिविटी है, उसके तहत वो सेकेंड पेपर जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उनसे भी उनमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप एक दो साल पहले का सेकेंड पेपर देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे वाक की अभिव्यक्ति को यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सीधे सीधे सिनेमा जैसी विधा से जोड़कर प्रश्न पूछा गया था। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपके अनुभव क्या है मैं नहीं जानता। आपने देखा होगा कि जब से नायडू जी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने हैं तब से सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो अलग अलग जो विधाएं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे और दूसरे जो संगठन हो, डिपार्टमेंट्स हो, वे काफी लाइमलाइट में रहने लगे हैं। हालांकि इससे पहले जो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे वो इसके मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन चूंकि उनके पास वित्त मंत्रालय भी था तो शायद उनके लिए उतनी इतना एक्टिव रह पाना संभव नहीं रह पाता हो, लेकिन फिर भी काफी चीजें आती थी। लेकिन नायडू जी के आने के बाद से आपको हमेशा न्यूज में कुछ न कुछ चीजें सुनने को मिल रही होंगी। इसका मतलब है कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो अब काफी एक्टिव है, और इस बात से भी पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अब इंडिपेंडेंट एक कैबिनेट मिनिस्टर सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिया है, और स्टेट मिनिस्टर तो जो राजवर्धन राठौर जी वो हैं ही। अभी तक जो सूचना प्रसारण मंत्रालय वित्त मंत्री के पास एक एडिशनल चार्ज के रूप में था, अब वो इंडिपेंडेंट, और वो भी नायडू जी जैसे एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर पॉलिटिशियन को उन्होंने ये डिपार्टमेंट सौंपा है। तो ये शो कर रहा है कि सरकार की निगाह में सूचना प्रसारण मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय फिलहाल बन गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे दोस्तों कि अभी जो पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घटी हैं उनको आप देखने समझने की कोशिश कीजिए, खासकर वाक की अभिव्यक्ति, जो संविधान में वाक की अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। आपको मालूम है कि जब उड़ता पंजाब फिल्म आने वाली थी तो उस समय खासकर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी कि जिसको हम सेंसर बोर्ड के नाम से जानने लगे हैं उसको लेकर के काफी विवाद उठा, और वो विवाद फिर लंबे समय तक चलता रहा, वो एक विवाद था। फिर आप देखते हैं कि मानहानि के दावे भी बहुत होने लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी बात की थी, और आज मैं आपको खासकर जो राजद्रोह, जिसको राष्ट्रद्रोह कहा जाता है, उन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक टिप्पणी की है उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स के रूप में आज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। और याद रखिए कि जो सिनेमा है वो एक एक्सप्रेशन की एक विधा ही है, राइट। तीसरी बात आप देख रहे हैं कि मित्रों के अभी कुछ ही समय में 15 दिन के अंदर अंदर एक जो रेडियो है, दो सूचनाएं उसके बारे में थी कि बांग्लादेश के लिए एक आकाशवाणी मैत्री की शुरुआत की गई है, और एक बलूचिस्तान या बलूच लैंग्वेज में भी एक समाचार की शुरुआत करने की कुछ ऐसी खबर थी। फिर आप देख रहे हैं कि मन की बात के तहत अब रेडियो एक पॉपुलर विधा होती जा रही है, लोग अब रेडियो सुनने लगे हैं, रेडियो को पसंद करने लगे हैं। जिस रेडियो को हमने एक तरीके से एक गठरी में बांध करके किनारे कर दिया था, अब वो फिर से लाइमलाइट में वो आ रहा है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो फिर से एक प्रोमिनेंस प्राप्त कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि फिर ब्रिक्स देशों का जो फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में हुआ, और उस समय भी सिनेमा किस तरीके से देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बन सकता है, मैत्री का माध्यम बन सकता है, सहयोग का आधार तैयार कर सकता है। इस बारे में भी काफी बातें की जा रही हैं। यानी कि यूं कह लीजिए कि जो मीडिया डिप्लोमेसी भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। तो मित्रों, इनको आधार बनाकर मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है, एक मेरी राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा और रेडियो इस साल जो दिसंबर में एग्जाम होने हैं मेंस, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो उस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों में से ज्यादातर तो ऐसे ही होंगे स्टूडेंट्स जो बट नेचुरल है कि दिसंबर के एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, है ना। आपके लिए भी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जो दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही अंतर है। मतलब आप भी भले ही आपने प्री दिया हो या न दिया हो, आप आफ्टर आगे देने की आप सोच रहे हैं, फिर भी आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, अब जो दूसरी खबर है वो जो रेडियो में पहली खबर थी वो थी एशियान के शिखर बैठक की, तो थोड़ी सी मैं इस पर आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, एक तो जो शिखर बैठक होती है, शिखर शब्द है एपेक्स बैठक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब G20 के शिखर बैठक में गए थे, यानी कि यह टॉप मोस्ट कौन बैठक है, तो इसलिए इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी अपनी सबसे बड़ी अहमियत भी होती है। तो एशियान की शिखर बैठक कुछ इसी तरह की बैठक है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां याद रखिएगा आप कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आ सकती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, तो बट नेचुरल कि भारत भी सदस्य राष्ट्र होगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन एक और संगठन है मित्रों जो बहुत ज्यादा चर्चा में आता है, वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद, वो सार्क संगठन है, भारत इसका सदस्य है और बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है। जो एशियान बना था मित्रों वो इससे काफी पुराना है, सार्क से काफी पुराना है। जो एशियान बना था वो 1967 में, जबकि सार्क जो बना था वो 1985 में। तो यहां आपको खासकर इस बात का ध्यान रखना होगा। वैसे भी आप देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से सच पूछे तो दबाव के स्तर तक, जबरदस्ती के स्तर तक ये करवाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग नक्शे को बिल्कुल अपने दिमाग में रचा बसा डालिए। देखिए, आप अगर 5 दिन तक लगातार नक्शा देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होना जाना है उससे, तो ज्यादा घचपिच हो जाएगा। आप रोज नक्शा देखिए और जो जरूरत का हिस्सा है उसी को देखिए, यानी कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, सिर्फ उसी हिस्से को देखिए। आप देखेंगे कि 6 महीने में आप नक्शे के एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैप के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सिविल सर्विस के लिए मैप का एक्सपर्ट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें, चाहे आप मतलब हर सब्जेक्ट में आपको नक्शा काम आएगा, क्योंकि नक्शा का मतलब है लोकेशन, स्थान। और कोई भी घटना, जो भी घटेगी, दो चीजें तो होंगी, उसका कोई ना कोई स्थान होगा और कोई ना कोई समय होगा, तो आपको स्थान के बारे में तो जानना ही चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मित्रों, फिर से मैं आपको कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप नक्शा उठाएं, एटलस उठाएं और एशियन देशों को लोकेट करें। आप देखिए कि जो एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन है, इसमें साउथ ईस्ट, चलिए हम दूसरी चीजों को छोड़ते हैं जो फोकस करने की बात है, उसमें साउथ ईस्ट यानी कि एशिया का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और सार्क में क्या है, साउथ एशियन यानी कि एशिया का केवल दक्षिण भाग। तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में आता है, पाकिस्तान भी इसी में आता है, तो ये सब इसके मेंबर हैं, लेकिन जो साउथ ईस्ट है भारत उसमें आता ही नहीं, चूंकि रीजनल कोऑपरेशन है ना, यह क्षेत्रीय सहयोग परिषद है, एक क्षेत्र में बनाया गया है, तो चूंकि वो साउथ ईस्ट में आता ही नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन जो इस तरह के संगठन हैं, याद रखिए कि कुछ कंट्रीज को इनवाइट करते हैं एक सम्मानित सदस्य के रूप में, ऑब्जर्वर के तहत वो इनवाइट करते हैं। और चूंकि देखिए भारत एक एशिया का बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र तो है, चीन और भारत दो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं एरिया के, भूभाग की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी। तो ऐसे में इस तरह के संगठन इनवाइट गेस्ट के रूप में इनवाइट करने के कदम उठाते हैं, तो भारत वहां पहुंच रहा है। न्यूज में आपने ये भी सुना मित्रों कि ये लाओस की राजधानी में ये मीटिंग हो रही है, तो बट नेचुरली कि लाओस इसका एक सदस्य होगा। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको एक बार एटलस पर लोकेट कर लें, और आपको ऐसा करना चाहिए चाहे कितना भी आलस्य आ रहा हो। मित्रों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी मेरा ये ऑडियो सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपने इस आलस्य को तोड़ें, उसको पराजित करें और एटलस खोलें और उनको देखने की कोशिश करें, ढूंढें कि ये देश कहां पर है। मित्रों मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि खासकर 1967 में, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी स्थापना की गई थी और 8 अगस्त को की गई थी, 8 अगस्त को ही 1967 में ये बना था। और आपको मालूम है कि कल जब इसकी शायद 7 अगस्त या 8 अगस्त को ही इसकी मीटिंग, इसी के आसपास ही मीटिंग होने वाली है, मतलब उसके आसपास ही रखा गया है। फ्रेंड्स इसके अभी 10 सदस्य हैं, 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। शुरू में 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी और बाद में 5 देश और इसमें जुड़ गए थे। तो स्थापना किसने की और क्या थी, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उससे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। मैं आपको केवल एक बार जो इसमें इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं, 10 कंट्री जिसके मेंबर्स हैं, उनके नाम आपको केवल एक इस ऑडियो में सुना दे रहा हूं ताकि आपके कान में वो आवाज पड़ जाए, दिमाग में फिर वो गूंजती रहेंगी, कभी आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप इन्हें एटलस पर देख लें। मित्रों ये 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया और लाओस, जहां अभी इसकी बैठक हो रही है। ये 10 देश हैं, इन 10 देशों की जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स लगभग 6.5 से 6.5 करोड़ के आसपास है, 6.5 से 6.5 करोड़। तो आप देखेंगे कि उस तरीके से पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 10 कंट्रीज हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेते हैं, जो टापू जैसे हैं, और खासकर ये पूरा का पूरा जो आपका नॉर्थ पैसिफिक जो ओशन है और इंडियन ओशन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, इंडियन ओशन खासकर, तो उन देशों में ये, उन महासागर के क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। फ्रेंड्स इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और जो सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि जो एशियन समूह है इसने इसको सिद्ध किया है, इसने सिद्ध किया ये मते, बहुत ही एक प्रतिष्ठित क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसकी पहचान है और सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में, क्योंकि इसने आपसी बहुत से विवादों को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया है। और इनका जो मेन मकसद है मित्रों वो 10 है, नो डाउट की वैसे ये आर्थिक संगठन है, आर्थिक विकास के लिए कि हम आपस में मिलकर अपना आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस मतलब सामाजिक विकास भी इसमें शामिल है और साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी ये जोर देते हैं और इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अब अंत में मैं छोटी सी बात आप लोगों को एक और कहना चाहूंगा मित्रों कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, खासकर भारत ने जब से लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई है, 1991 के आसपास भारत ने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनानी शुरू की, यानी कि पूर्व की तरफ देखो, तो ये पूर्व है। अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गई है कि केवल देखो ही नहीं बल्कि आप यूं कह लीजिए ज्यादा एक्टिव होकर के कुछ करो भी, अपनी तरफ से कुछ करो। और नो डाउट कि इसके बाद से भारत इस दिशा में काफी काम भी कर रहा है। आप देखेंगे कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ और पूर्वी देशों के साथ उसके संबंध बढ़ रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उन देशों की यात्रा कर रहे हैं और लाओस में जाना उनका और एशियान देशों के साथ बातचीत करना, आप यूं कह लीजिए कि उनकी जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसी को और इन्हेंस करेगा, उसे और मजबूत बनाएगा। तो मित्रों ये कुछ बातें मुझे एशियन सम्मेलन एशियन संगठन के बारे में आपसे करनी थी और मैं चाहूंगा कि आप मैप के जरिए इन देशों को लोकेट कर लें। और डेफिनेटली बैठक के बाद भारत ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां क्या कहा, कुल क्या निकल कर आया, इसके बारे में आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे ही, तो जब भी ये प्राप्त होंगे मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों एशियन शिखर बैठक के बारे में इतना ही और सच पूछे तो AIR न्यूज के बारे में भी बस इतना ही। अब मैं आता हूं दोस्तों न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज कुछ एक दो क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट हैं मित्रों। एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जिसकी मैंने चर्चा भी की थी सिनेमा के संदर्भ में कि जो राजद्रोह की जो बात होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि मतलब इस तरह के वाक्य न केवल राजद्रोह की बात तो छोड़िए मानहानि तक के मामले नहीं बनाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ एक दो सालों से राजद्रोह के बहुत से मामले दर्ज हुए हैं और अभी जब आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ दिए हुए भी हैं। तो एक तो यह इम्पॉर्टेंट है। दूसरे कुछ क्लिपिंग्स जो है ना G20 की बैठक के बारे में है कि G20 की बैठक कैसी रही और भारत का परफॉर्मेंस इसमें कैसा रहा, भारत को इससे क्या हासिल हुआ, इस पर इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। दोस्तों इस खासकर G20 से लेकर और कश्मीर पर जो हमारे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का जो रिएक्शन रहा है, खासकर जो उन्होंने बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की जो बात कही, उन सब के आधार पर यह माना जा रहा है कि भारत की विदेश नीति भी में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, उसको लेकर के भी एक आर्टिकल है आर विक्रम सिंह का जो आईएएस के आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनको आप उस लेख को आप जरूर पढ़िएगा, दैनिक जागरण में है, यह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और दोस्तों एक जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसे मैं यूं कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कहना चाहूंगा सिविल सर्विस की दृष्टि से, वह है देवेंद्र शर्मा जी का जो दैनिक भास्कर में छपा है, खासकर खाद्य तेल संकट को लेकर। आप देख रहे हैं कि भारत अब खाद्य तेल का आयातक देश बन गया है, उस समस्या को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा एक एनालिटिकल आर्टिकल लिखा है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग ना एक छोटा सा नोट्स भी तैयार कर लें, 400-500 शब्दों का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तैयार कर लेंगे तो आगे चलकर ये आपके काम आएगा और इसी में ही आपको GM फसलों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों न्यूज़पेपर से इतना ही। अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं एक जो मेरे प्रिय आप ही में से एक श्रोता हैं जिन्होंने एक मेल लिखा है उन्हीं की बात को आप लोगों के सामने रखकर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। ये नौजवान साथी हैं वीरेंद्र कुमार जो बेगूसराय बिहार से हैं। इन्होंने एक घटना छोटी सी घटना की चर्चा की है और घटना कुछ ऐसे ही है कि वो मैं किसी किताब की दुकान से कोई किताब खरीद कर लाए होंगे तो थोड़ी सी महंगी किताब होगी और घर ले गए और फिर उस किताब को वो वापस करने गए नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। अब वो क्यों वापस करने गए ये तो उसमें उन्होंने नहीं लिखा है। तो जब वो किताब वापस लौटाने गए तो दुकानदार ने उसे लेने से मना कर दिया और जब उसने मना कर दिया तो जो वीरेंद्र हैं अब वो बिल्कुल बिफर से गए, काफी नाराज हो गए। तो जो भी कहा सुनी हुई हो उन्होंने खासकर जो बात लिखी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उसी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि सर, मेरी कहा सुनी हो जाने के बाद जब मैं आया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ और मेरा मन बिल्कुल प्रायश्चित से, बिल्कुल ग्लानी से भर गया, क्योंकि जो दुकानदार थे वो बुजुर्ग थे और मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपके माध्यम से अपने नौजवान साथियों को यही बताऊंगा कि मतलब जो संतुलन रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए जब भी ऐसी नौबत आए। तो ये बात उन्होंने कही। मित्रों, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाद में अपनी गलती को रियलाइज किया। दोस्तों, सुधार की शुरुआत यहीं से होती है जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं। गलतियां होंगी ही, गलतियां न हो इसका सिर्फ एक उपाय है और वो ये कि हम कुछ न करें। कुछ नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ न करें। हम कुछ न करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, करने के लिए पैदा हुए, तो कुछ तो हम करेंगे, और जब करेंगे तो गलतियां होंगी ही, राइट। गलतियां सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस बीता है, तो सबसे बड़ी जो शिक्षक होती है हमारी, वो हमारे ही द्वारा की गई गलतियां होती हैं, क्योंकि वो तो हमें प्रैक्टिकल शिक्षा देती है। मैं तो आप लोगों को, अगर आप मुझे अपना शिक्षक मानते हैं, तो मैं तो आपको डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ किताबों से लिख करके बता देता हूं, बस प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं करा रहा हूं ना। लेकिन आपकी गलतियां तो आपको प्रैक्टिकल करा रही है और उसके माध्यम से आपको शिक्षा दे रही है। सोचिए, उस अनुभव परक ज्ञान है वो, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये होता तब है जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करें, जैसा कि यहां वीरेंद्र रियलाइज कर रहे हैं। होता क्या है, सामान्यतः हम अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करते, अंत तक नहीं करते, और जब हमारी बहस होती रहती है तब तो हम करते ही नहीं है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हमारा किसी से विवाद शुरू होता है, याद रखिए कि हमारा विवेक गायब हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे दिमाग के बल्ब के स्विच को किसी ने ऑफ कर दिया है, विवेक गायब हो जाता है और उसमें अंधकार का जो राक्षस होता है, अज्ञान का जो राक्षस होता है, वो उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है, और वो कौन होता है, हमारा ईगो। जैसे ही ईगो आता है, सच सही क्या है, गलत क्या है, उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। फिर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रह जाता है, और वह है कि मुझे अपने को सच सिद्ध करना है। मतलब मेरी स्थिति उस वकील की तरह बन जाती है जो कोर्ट में जिरह कर रहा है अपने मुवक्किल के लिए, और यह जानते हुए भी कि वो गलत जिरह कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका प्रोफेशन है, वो जानता है कि इस मुवक्किल ने गलती की है, लेकिन वह सिद्ध करने के लिए कि उसने गलती नहीं की है कुछ भी तर्क दे रहा है। बस लगभग हम सबकी स्थिति उसी काले कोट पहने हुए वकील की तरह बन जाती है जो खुद है उसको बचाना है, चाहे सही हो या गलत हो। और मित्रों, बस वहां ईगो काम करने लगता, हम अपने ईगो को बचाना चाहते हैं। हम बाद में चाहे हमें जो भी महसूस हो, और याद रखिए कि महसूस भी नहीं होता है, बल्कि सच पूछे तो जब हम उसे हरा देते हैं, उसे पराजित कर देते हैं, चाहे हमने गलत तरीके से ही क्यों ना हराया हो, तो बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी भुजाओं को देखते हैं, अपनी पीठ को अपने हाथों से ही थपथपाते हैं कि, और बड़े गर्दन झटक करके उसको चढ़ाते हुए वहां से चल देते हैं कि देखा तुमने क्या समझ रखा था मुझको। और इससे फिर से हमारे ईगो को एक संतुष्टि मिल जाती है और हमारी जो प्रतिशोध की भावना थी वह शांत हो जाती है। और बहुत से लोग इसी को स्वाभिमान का नाम देते हैं, इसी को सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि सेल्फ रेस्पेक्ट और इसमें, अभी जो मैंने चर्चा की, इसमें बहुत बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे की रेस्पेक्ट की हत्या करके कभी सेल्फ की रेस्पेक्ट नहीं बन सकती, नहीं बच सकती, नहीं बढ़ सकती। लेकिन हम चूंकि विवेक को उस समय खो चुके होते हैं, तो हमारे साथ यही कुछ होता है। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि खासकर ऐसे समय में जब हमें क्रोध आ रहा हो, स्पेशली जब क्रोध आ रहा हो, जब हमें लग रहा है कि हमारे स्वाभिमान को किसी ने धक्का पहुंचाया है, जब हमें महसूस हो रहा हो कि हमारे स्वार्थ पर चोट पहुंची है, तब हम कितना खुद को संतुलित रख पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो जितना उस समय अपने को संतुलित रख लेते हैं, मान करके चलिए कि वो उतने ज्यादा अध्यात्म के करीब हैं, वो उतने ज्यादा इंसानियत के करीब हैं, वो उतने ज्यादा न्याय के पक्षधर हैं, ईश्वर उतने ज्यादा उनके साथ है और वो उतने ही ज्यादा विवेकशील, प्रज्ञाशील, ज्ञानवान प्राणी है। और मुझे तो लगता है कि यही संतत्व भी है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस मैं इतनी ही बातें आपसे कहना चाहूंगा। अब मैं आता हूं आज के अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक मेल है अच्छे लाल चौहान का, जो उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में काफी लगभग 50 लोगों को बताया है और उनसे उनको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अच्छे लाल, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी। शुभकामनाएं इसलिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस काम को और भी आगे बढ़ाएं और आपको उसमें सफलता मिले। तो मित्रों, मैं कुछ दोस्तों के और नाम ले रहा हूं। वह प्रशांत कुमार, दिनेश पांचाल, शुभम विजय टोपनवार, आलोक कुमार जांजगीर छत्तीसगढ़ से, मुकिमुद्दीन दिल्ली से, पीयूष सिंह, सोनिका दुबे थाने महाराष्ट्र से, शमशेर अली तनवर, नीतू सिंह चंडीगढ़ से, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, प्रियम दत्ता पश्चिम बंगाल से और रंजीत कुमार मंडल कटिहार बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं। आपका सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।